परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। याकूब की पत्री व्यवहारिक निर्देशों का एक संग्रह है, जो सारे संसार में तितर बितर होकर रहने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है। लेखक मसीही आचार व्यवहार और चाल चलन के लिए व्यवहारिक ज्ञान और मार्गदर्शन से संबंधित निर्देशों को प्रस्तुत करने के लिए कई सजीव उपमाओं का प्रयोग करता है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम शामिल हों और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए और सुनने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने अध्ययन में आज याकूब की पत्री से अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने होशे नबी की पत्री का अध्ययन किया था, परंतु आज से हम एक नई पत्री का, जो नए नियम की पत्री याकूब की पत्री है, उससे अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम याकूब की पत्री का अध्ययन आरंभ करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं और इतना ही नहीं, इस अध्याय से जब हम सीखना चाहते हैं, इस पुस्तक से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें, उन्हें सिखाएं, ताकि प्रभु आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हम सबों को आप आशीषित करें, इस पुस्तक के अध्ययन में हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम अपने अध्ययन को याकूब की पत्री से आरंभ करेंगे, तो सर्वप्रथम आज हम याकूब की पत्री से उसके पृष्ठभूमि और रूपरेखा को देखेंगे और इसके साथ साथ हम परमेश्वर के वचन में भी ध्यान देंगे। तो हम देखते हैं कि याकूब की पत्री पारंपरिक रूप से सामान्य पत्रियों में पहली पत्री है। याकूब पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यहूदा की पत्रियों को सामान्य पत्रियां कहा जाता है। उन्हें सामान्य या कैथोलिक पत्रियां इसलिए कहा जाता है कि वे सबके लिए लिखे गए थे, एक मनुष्य या किसी एक कलीसिया को नहीं, वरन विश्वव्यापी कलीसिया को लिखे गए थे। मेरे मित्रों, याकूब की पत्री के लेखक को निश्चित करना एक बड़ी समस्या है। इसमें शक नहीं कि याकूब ने यह पत्री लिखी थी, परंतु प्रश्न यह है कि वह कौन सा याकूब था। याकूब का नाम तीन पुरुष धर्मशास्त्र में स्पष्ट व्यक्त हैं, यानी कि पाए जाते हैं। तो आइए हम इन तीनों याकूब को देखें कि वे कौन हैं या कौन सा याकूब है जो इस पत्री का लेखक है। पहला, यूहन्ना का भाई जब्दी के पुत्रों में से एक। जी हाँ, इन दोनों को प्रभु यीशु ने गर्जन के पुत्र कहा था। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 पद में आप देख सकते हैं, राजा हेरोदेस ने उसका सिर कटवा दिया था और पतरस को भी बंदी बना लिया गया था। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम इसे पढ़ते हैं। अब दूसरा याकूब है, अल्फियस का पुत्र याकूब, जिसे छोटा याकूब कहा जाता है, उसका नाम शिष्यों की सूची में आया है, परंतु हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं इसे याकूब की पत्री का लेखक स्वीकार नहीं करता। अब है तीसरा याकूब, प्रभु यीशु का भाई याकूब, वह यूसुफ और मरियम का पुत्र था। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 53 पद में हम पढ़ते हैं, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? पहले तो प्रभु यीशु के भाइयों ने उसमें विश्वास नहीं किया, परंतु वह भी आया जब याकूब यरूशलेम की कलीसिया का प्रधान अगुआ बना। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में याकूब यरूशलेम की महासभा का अध्यक्ष था। उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस सभा का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उसने निर्णायक मत दिया था। मेरे विचार में गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस इसी याकूब की चर्चा करता है। तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, यही वह याकूब है जिसे हम इस पत्री का लेखक मानते हैं। मेरे प्रियो, यह पत्री लगभग सन 45 से 50 में लिखी गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि पौलुस की शिक्षाओं का खंडन करने के लिए याकूब ने यह पत्र लिखा था, परंतु पौलुस का प्रथम पत्र सन 52 से 56 के मध्य कभी लिखा गया था, अर्थात पौलुस ने जो भी पत्र लिखे वे याकूब की पत्री के बाद हैं। याकूब की पत्री नए नियम की पहली पत्री है। यह तो स्पष्ट है कि याकूब पौलुस के समान कर्मी की अपेक्षा विश्वास पर बल देता है, परंतु निसंदेह उसका मुख्य विषय है विश्वास का प्रमाण क्या है। याकूब और पौलुस दोनों ही विश्वास और कर्म पर बहुत बल देते हैं। वे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने के 2 पक्ष हमारे सामने रखते हैं, और ये दोनों पक्ष पौलुस की पत्रियों में स्पष्ट प्रकट हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला पक्ष, विश्वास। हम कर्मों द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, नहीं ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। और उसने तीतुस को लिखा 3 अध्याय उसके 5 पद में, उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। यह विश्वास के बारे है। अब हम आगे देखते हैं कर्म, दूसरा पक्ष। हम कर्मों के आधार पर धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं। तीतुस 3 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस कहता है, यह बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में वह लिखता है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। विश्वास उद्धार का मूल है। पौलुस इस पर सबसे अधिक बल देता है। कर्म उद्धार का फल है। याकूब भी इसी बात पर बल देता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विश्वास उद्धार का कारण है और कर्म उद्धार का परिणाम है। जी हाँ, कर्मों से पौलुस का अभिप्राय है व्यवस्था पालन। याकूब कहता है कि कर्म आवश्यक है, तो उसके कहने का अर्थ है विश्वास से उत्पन्न कर्म, न कि व्यवस्था के काम। अध्याय 2:18 में वह लिखता है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों द्वारा तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर आपके मन को देखता है और वह जानता है कि आप विश्वास रखते हैं या नहीं। यह विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना है। आपका पड़ोसी तो आपके मन को नहीं देखता है, वह तो केवल आपके कामों को देखता है जो आपके विश्वास के कारण उत्पन्न होते हैं। मेरे प्रियो, निम्नलिखित 2 पदों को मैं इस पत्री के मुख्य पद कहता हूं। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 22 पद लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और तब हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जी हां, याकूब की पत्री मसीही विश्वास के सदाचार से संबंधित है, न कि धर्म की शिक्षाओं से। वह निस्संदेह व्यवहारिक विश्वास पर बल देगा, परंतु विश्वास से नहीं टलेगा। अति स्पष्ट है कि याकूब एक अत्यधिक व्यवहारिक मनुष्य था। परंपराओं के अनुसार वह बूढ़े ऊंट के घुटने कहलाता है, क्योंकि उसने प्रार्थना में बहुत समय लगाया था और घुटने पर रहता था। व्यवहारिक शैली के कारण इस पत्री को नीति वचनों के साथ रखा गया है, वरन पर्वतीय उपदेश के साथ भी। याकूब का विवाद है कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया मनुष्य कर्मों से जाना जाता है, कर्मों की परख नली में उसे जाना होगा। अध्याय 1:2 तब अध्याय 3 सांसारिकता और अध्याय 4 धनवानों को चेतावनी और अध्याय 5 हमें इसके विषय में बताता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 1 से, जिसका विषय है परमेश्वर परीक्षाओं द्वारा विश्वास को परखता है। परमेश्वर बुराई नहीं लाता है, परमेश्वर वचनों द्वारा विश्वास को परखता है, मनुष्य के वचनों से नहीं। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री एक अत्यधिक व्यवहारिक पुस्तक है जो मसीही विश्वास के सदाचारी जीवन से संबंधित है, न कि धर्म की शिक्षाओं से। विश्वास का विषय संपूर्ण पत्री में प्रकट है। याकूब की पत्री में ध्यान का केंद्र विश्वास द्वारा उत्पन्न कर्म है। प्रथम 3 अध्यायों में वह सच्चे विश्वास के सत्यापन की चर्चा करता है और हमें बताता है कि परमेश्वर कैसे कैसे विश्वास को परखता है। हम देखते हैं परमेश्वर परीक्षाओं द्वारा परखता है। आइए आप मेरे साथ पढ़िए याकूब की पत्री 1:1 लिखा है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब। दास का अर्थ है बंधुआ दास। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं प्रभु यीशु का आधा भाई होता तो मैं अपने पत्र में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख अवश्य करके आप पर प्रकट कर देता, यद्यपि मैं बड़ी दीनता और पावनता से ऐसा करता, परंतु प्रकट अवश्य करता। परंतु याकूब यहां पर ऐसा नहीं करता है, वह तो इसकी अपेक्षा अपने आप को परमेश्वर और प्रभु यीशु का बंधुआ दास कहता है। आरंभ में तो प्रभु यीशु के भाई उसे परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, क्योंकि वे साथ साथ बड़े हुए थे, साथ साथ खेलते थे, उन्होंने उसे बड़ा होते हुए देखा था, उन्होंने यह भी देखा था कि वह कुछ अलग था, परंतु उसे जगत का उद्धार करता नहीं मानते थे। इस पृथ्वी पर वास करते समय हमारा प्रभु यीशु मानवता में सिद्ध था कि उसके भाइयों को भी विश्वास नहीं हुआ था। इसमें दो राय नहीं कि आपके परिवार के सदस्यों में ही वचन पहुंचाना सबसे कठिन काम है, तथापि हमें उन्हीं को सुसमाचार सुनाना है। याकूब ने प्रभु यीशु को अपना देहिक भाई ही नहीं अपना मुक्तिदाता भी पहचाना और फिर उनका बंधुआ दास हुआ। याकूब कहता है, वह मेरा प्रभु है। यीशु उसका मानवीय नाम था और याकूब उसे जानता था कि वह उसका भाई है, परंतु वह उसे मसीह भी जान गया था, जो संसार के पापों के लिए मर गया। उसका नाम मात्र यीशु ही नहीं था, वह यीशु कहलाता था, क्योंकि वह अपने लोगों के पापों के लिए उनके पापों से उद्धार करेगा। याकूब कहता है, उन 12 गोत्रों को जो तीतर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। स्पष्ट है कि याकूब इसराइल के विश्वासियों को संबोधित कर रहा है। वह उस युग के यहूदी विश्वासियों को लिख रहा था जो इधर उधर भटक गए थे, तितर बितर हो गए थे। मेरे प्रियो, आरंभ में तो लंबे समय तक कलीसिया केवल यहूदी विश्वासियों का समूह थी। अन्य जातियों से कुछ ही लोग विश्वास में आए थे, परंतु शीघ्र ही रोमी साम्राज्य का केंद्र, जो आज तुर्किस्तान कहलाता है, वहां महान जागृति आई। वहीं एशिया माइनर की 7 कलीसियाएं थी, परंतु याकूब इससे पूर्व लिख रहा है और स्पष्ट है कि वे यहूदी विश्वासी थे। कहता है, 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं। आज 10 खोए हुए गोत्रों की चर्चा की जाती है, परंतु वे खोए हुए नहीं हैं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने उन्हें संपूर्ण संसार में बिखरा दिया है, तितर बितर कर दिया है। यद्यपि अमेरिका और इंग्लैंड में अनेक यहूदी हैं, वे प्राचीन कालीन यहूदी नहीं हैं, वे संपूर्ण विश्व में प्रवासी हैं। प्रत्येक महाद्वीप में, रूस में यहूदियों की जनसंख्या बहुत बड़ी है, कुछ चीन में हैं तो कुछ जापान में हैं, वे तीतर बितर होकर रह रहे हैं। याकूब ने उस युग के तीतर बितर हुए यहूदियों में से प्रभु ईश्वर के विश्वासियों को यह पत्र लिखा था और कहता है कि उन्हें नमस्कार पहुंचे। नमस्कार पहुंचे का मूल यूनानी शब्दार्थ है आनंद। याकूब रूखे स्वभाव का मनुष्य नहीं था, वह जीवन से छलकता था कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। अब याकूब विषम परिस्थितियों में आनंद करने की बात कहता है। आइए हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री 1 उसका 2 लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कहता है, नाना प्रकार की परीक्षाओं अर्थात तरह तरह की परीक्षाओं। दूसरे शब्दों में, परीक्षाओं में पढ़ने पर रोना आरंभ नहीं करना, जैसे कि कोई भयानक बात हो गई है। आपको आनंदित होना है और परीक्षाओं को हर्ष का कारण समझना है, क्योंकि परमेश्वर आपको परख कर देख रहा है। मेरे प्रियो, एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, क्या परीक्षाओं की गहराई में और तनावों में भी आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं? मैं स्पष्ट कहूं तो इसका उत्तर है नहीं। याकूब के कहने का अर्थ यह नहीं है, यह कहना उचित नहीं कि आपके कष्टों में आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, जबकि आप वास्तव में उसके साथ मेल में नहीं हैं। लोग कहते तो हैं कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा स्वीकार कर ली है, परंतु वे मुंह लटकाए कुड़कुड़ाते हुए घूमते रहते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप आनंदित नहीं हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा के तालमेल में नहीं हैं। याकूब कहता है कि परमेश्वर हमें परेशान करने के लिए परीक्षाओं में नहीं पड़ने देता है। जी हां, यह अंत नहीं है। याकूब के पत्री 1:3 में लिखा हुआ है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर के मन में एक उद्देश्य है, आप इस विषय निश्चिंत हो जाएं। याकूब आपकी परीक्षाओं के संबंध में आपके मनोभाव की चर्चा कर रहा है। यहां व्याकरण का सामान्य भूतकाल संकेत देता है कि परीक्षाओं का परिणाम आनंद है। इब्रानियों की पत्री 12 में हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वासी की ताड़ना करता है, जिसका वास्तविक अर्थ है बाल्य सुधार। यदि उद्देश्य भला न हो तो परीक्षा अर्थहीन, कष्ट, मूर्खता और परखना तर्कहीन होगा। परमेश्वर कहता है कि उनके पीछे एक मुख्य कारण है और वह भला है। रोमियो की पत्री 8:28 में पौलुस लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे ऊपर परीक्षाओं का दबाव तथा बैरी की आग जल रही हो और त्रासदी एवं कष्ट पड़ रहे हो, तब विश्वास का स्वभाव यह हो कि परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के निमित्त यह किया है और उसका लक्ष्य महान तथा विशाल है। हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाएं। यह विश्वास का परखा जाना है। हम देखकर नहीं, विश्वास रख कर चलते हैं। मध्य युग में किसी ने कहा था, परमेश्वर कुछ नहीं करता और कुछ हो तो रोकता भी नहीं है, परंतु हम स्वयं करते हैं यदि हम उसके समान ही घटनाओं को देख पाएं। मेरे प्रियो, विश्वास के परखे जाने में कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है? इस पत्री में याकूब कहता है कि विश्वास का परखा जाना सच्चे विश्वास का परिणाम है। मैं एक घरेलू उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कुछ समय पूर्व मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ के एक बड़े कंपनी के अधिकारी की सेक्रेटरी को मसीही विश्वास में लाऊं। उसने अनेक अवसरों पर मुझे वहाँ के बाइबल अध्ययन में आमंत्रित किया। मैंने वहाँ देखा कि मशीन कैसे बनते हैं। पहले तो वे उसका कागज पर नक्शा बनाते हैं, तदोपरांत उसकी अंतिम रूपरेखा और नमूना तैयार किया जाता है। उस नमूने को परखा जाता है, तदोपरांत उत्पाद आरंभ किया जाता है। एक वर्ष बाद वह तैयार होकर निकलता है। अब उनके सामने एक प्रश्न होता है, क्या यह मशीन चलेगा? क्या वह काम करेगा? क्या वह परीक्षण में सफल होगा? अतः परीक्षण करने वाला उसे परखेगा। जब मशीन वह सब कुछ सिद्ध कर दे जो उत्पादक ने उसके बारे में कहा था, तब वह मशीन विश्वसनीय कहलाएगा और दूसरी कंपनी उसे खरीदेगी। वह बाजार में उतारा जाएगा और लोग उसे खरीदेंगे। मेरे प्रियो, इस प्रकार वह मशीन सेवा योग्य और उपयोगी होगा। इसी प्रकार कच्चा माल विश्लेषक के पास लाया जाता है कि उसे परख कर देखा जाए कि वह सोना है या चांदी। वह उसे आग पर तपा कर उसमें अम्ल डालता है कि उसकी सत्यता को परखे। इसी प्रकार परमेश्वर भी विश्वास की सत्यता या प्रामाणिकता को परख कर देखता है। किसी ने कहा है, दुख का अम्ल विश्वास के सिक्के को परखता है। इसमें बहुत सत्य निहित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी उद्देश्य के निमित्त हमारे विश्वास को परखता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। वह हमें इसलिए परखता है कि हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न हो, हमारे जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी हो, हमारे जीवन में वचन की परिपक्वता आए। वह हमें निराश करने के लिए नहीं, परंतु मजबूत करने के लिए, धीरजवंत होने के लिए ऐसा करता है। मेरे प्रियो, हम आज अपने जीवन में इस बात को जान लें कि परमेश्वर आज यदि मुझे किसी परिस्थिति में रखा है तो वह इसलिए रखा है कि मैं धीरज को उत्पन्न करूं और उसके भय में अपने जीवन को बिताऊं। मेरे प्रियो, यहां पर 12 गोत्र जो तितर बितर हो चुके हैं, सताव और कष्ट में है, और परमेश्वर उनके बीच में धीरज की बातें याकूब के द्वारा करता है। आज वह मेरे लिए और आपके लिए भी करता है। मेरे प्रियो, यहां पर अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मुसाफिर मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, तन्हाइयों की रातें दिल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी।